पृष्ठ संख्या 168 अध्याय 14 जैन धर्म एवं दर्शन। अ जैन धर्म प्राचीनता। जैन धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में एक है। भारत का यह धर्म भारत की भूमि की ही सीमा तक विकसित पल्लवित एवं पुष्पित नहीं हुआ, बल्कि समुद्र पार सुदूर लंका तक इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ। जहां एक और साहित्यिक साक्ष्य इसकी प्राचीनता की पुष्टि प्रथम नागरिक सभ्यता के विकास के पूर्व तथा ऋग्वैदिक काल अर्थात ईसा पूर्व 1500 के आसपास करने में सफल प्रतीत होते हैं, तो दूसरी ओर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर हीरालाल जैन तथा मोहनलाल मेहता ने जैन धर्म की प्राचीनता सैंधव सभ्यता अर्थात 3000 ईसा पूर्व में प्रमाणित करने का तर्क दिया है। जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में हमें निम्न साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। और साहित्यिक साक्ष्य 1 जैन पुराण, 2 भागवत पुराण, 3 ऋग्वेद, 4 यजुर्वेद, 5 महाभारत, 6 बौद्ध साहित्य। ब पुरातात्विक साक्ष्य 1 सिंधु घाटी के अवशेष, 2 लोहानीपुर पटना की मस्तकहीन यक्ष मूर्ति। और साहित्यिक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्यों में जैन पुराण इस धर्म की प्राचीनता प्रथम नागरिक सभ्यता के विकास के पूर्व सिद्ध करते हैं, जो ऋग्वेद इसकी प्राचीनता 1500 ईस्वी पूर्व सिद्ध करता है। इन साक्ष्यों का विवरण निम्न है। 1 जैन पुराण। जैन पुराणों में भारतवर्ष का वर्णन इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ आरंभ होता है। यह वर्णन निम्न है। भारत जम्बू द्वीप के दक्षिण का भाग है। इसके उत्तर में हिमवान पर्वत है और मध्य में विजयार्ध पर्वत। सिंधु नदी पश्चिम में हिमवान पर्वत से निकलकर बहती है। इसके पूर्व में गंगा नदी है। दक्षिण भारत के पूर्व, मध्य और पश्चिम 3 भाग हैं। भारत के इन्हीं 6 खंडों की विजय करके कोई चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त किया जा सकता है। भारत के उस काल की अवस्था का यह वर्णन करता है जब नागरिक सभ्यता का विकास यहाँ नहीं हुआ था। उस समय पृथ्वी सघन वृक्षों से भरी हुई थी। तब वन्य पशु ही पाए जाते थे, मनुष्यों की बस्ती नहीं थी तथा कौटुंबिक व्यवस्था भी पूर्ण अविकसित थी। इस काल में धर्म पुण्य पाप की भावना आदि का कोई विचार नहीं था। पुराणकारों द्वारा यह अवस्था भोग भूमि थी, क्योंकि इसमें आगे आने वाली कर्म से संबंधित कृषि एवं उद्योग आदि की अवस्थाओं का अभाव था। उक्त अवस्था में परिवर्तन हुआ तथा कर्म भूमि का युग आया। इसमें 14 महापुरुषों का विशेष योगदान रहा, जिन्हें कुलकर या मनु कहा गया है। उन्होंने पशुओं से रक्षा के उपाय, भूमि पर व्यक्तिक स्वामित्व, कृषि द्वारा अन्न उत्पन्न करने की कला आदि सिखाए। इनके पश्चात जिन महापुरुषों ने सभ्यता के युग में धर्म के उपदेश व अपने चरित्र द्वारा अच्छे बुरे की शिक्षा दी, ऐसे 63 शलाका पुरुष विशेष गणनीय पुरुष हुए। उन्हीं का चरित्र जैन पुराणों में विशेष रूप से वर्णित पाया जाता है। इन 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण सम्मिलित हैं। ये 63 शलाका पुरुष हुए, जिनमें सबसे प्रथम जैनियों के आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं, जिनसे जैन धर्म का प्रारंभ माना जाता है। उनका जन्म उक्त कुलकरों के में अंतिम कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से हुआ था। जैन पुराणों में ऋषभदेव के जीवन व तपस्या तथा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद धर्मोपदेश का वर्णन मिलता है। जैन धर्मानुयायी इसी काल से अपने धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर हीरालाल जैन के अनुसार ऋषभदेव के काल का अनुमान लगाना कठिन है। पुराणों में वर्णित अवस्था के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता आधुनिक नागरिक सभ्यता के पूर्व प्रमाणित होती है। 2 भागवत पुराण। भागवत पुराण से जैन धर्म की प्राचीनता ऋषभदेव के काल से सिद्ध होती है। इसके वर्णन से ज्ञात होता है कि ऋषभदेव के चरित्र को सुनकर राजा अर्हन कलयुग में अपनी इच्छा से इस धर्म का प्रचार करेगा। भागवत पुराण का यह वर्णन जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के वर्णन से मिलता है तथा प्रवर्तित धर्म का अभिप्राय जैन धर्म से। भागवत पुराण का कथन है, वर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परम महर्षिभिः प्रसादितो नामः प्रियाचिकीर्षया तदवरोधयेन मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमांसिनां शुक्लया तन्वावतार। अर्थात यज्ञ में श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर हे विष्णुदत्त परीक्षित, स्वयं श्री भगवान विष्णु महाराज की नाभि को प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ में आए। उन्होंने वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्मों को प्रकट करने की इच्छा से इस पवित्र शरीर का अवतार ग्रहण किया। इससे स्पष्टतः यह विदित होता है कि ऋषभ देव की मान्यता और पूजनीयता के संबंध में जैन और हिंदुओं के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जैनी लोग ऋषभ देव को आदि तीर्थंकर मानते हैं तो हिंदू उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके ईश्वर के अवतार होने की इसी दृढ़ मान्यता से शिव महापुराण में भी उन्हें शिव के 28 योगावतारों में शामिल किया गया है। भागवत पुराण का यह अवतार प्राचीनता में राम और कृष्ण के अवतारों से पूर्व का लगता है। भागवत पुराण में इस अवतार का जो वर्णन है उससे श्रवण धर्म की परंपरा भारतीय साहित्य में वातरशना श्रवण ऋषियों के धर्म को प्रकट करती है। भागवत पुराण का कथन है, अयम एवतारो रजसोपसुत कैपल्योपशिक्षणार्थ। अर्थात भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को कैवल्य की शिक्षा देने के लिए हुआ। किंतु डॉक्टर जैन उक्त वाक्य का अर्थ यह लेते हैं कि यह अवतार रज से उपप्लुत अर्थात रजोधारण मलधारण वृत्ति द्वारा कैवल्य प्राप्ति की शिक्षा देने के लिए हुआ था। अतः वातरशना मुनियों के धर्मों की स्थापना करने तथा रजोजल्लिक वृत्ति द्वारा कैवल्य की प्राप्ति सिखलाने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। वातरशना मुनियों के काल निर्धारण की विवेचना करने पर हम पाते हैं कि इनका साहित्य में इनका उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में मिलता है। अतएव भागवत पुराण से जैन धर्म की प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन अर्थात 1500 ईसा पूर्व सिद्ध होती है। 3. ऋग्वेद। जैसा कहा जा चुका है, ऋग्वेद से जैन धर्म की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व ज्ञात होती है। ऋग्वेद के अध्ययन से हमें वातरशना मुनियों के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है उसके विषय में कुछ ऋचाएं निम्न हैं। मुनियों वातरशना पुषंगा वसते मला वातश्यानु ध्राजीयन्ति यत् देवासो अविक्षत उन्मदिता मौने येन वाता आतस्थिताम वयम शरीरे दस्माकम युयम मर्तासो अभिपश्यथ। सायण भाष्य के आधार पर डॉक्टर जैन ने उपर्यंकित के संदर्भ में वातरशना मुनि की उपस्थिति ऋग्वैदिक काल से सिद्ध किया है। उनका कथन है कि वातरशना मुनि मल को धारण करने के कारण वे पिंगल वर्ण दिखाई देते थे। ऋग्वेद की उपर्युक्त ऋचाओं के साथ केशी की भी स्तुति की गई है। केश्यग्निम केशी विषम केशी विभर्ति रोदसी केशी विश्वम स्वरदृशे केशीदम ज्योतिरुच्यते। अर्थात केशी अग्नि जल तथा स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है तथा समस्त विश्व के तत्वों का दर्शन कराता है। केशी प्रकाशमान ज्ञान ज्योति केवल ज्ञानी कहलाता है। केशी की यह स्तुति उक्त वातरशना मुनियों के वर्णन के प्रारंभ में की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि केशी वातरशना मुनियों में प्रधान थे। डॉक्टर जैन ने भी केशी को स्पष्टतः वात रचना मुनियों का अधिनायक माना है, जिनकी साधना में मल धारण, मौन वृत्ति और उन्माद भाव का विशेष उल्लेख है। सूक्त में आगे कहा गया है कि वे मुनिर देवस्य देवस्य सौ कृत्याय सखा हितः। ऋग्वेद के उक्त केशी संबंधी सूक्त तथा भागवत पुराण में वर्णित ऋषभदेव के चरित्र की विवेचना में समता मिलती है। जैन पुराणों में भी ऋषभ की जटाओं का वर्णन किया गया है। वातोद्धता जटास्तस्य रेजु राकुल मूर्तयः। और हरिवंश पुराण का कथन है, स प्रलंब जटा भार भ्राजिष्णु सप्रलंब जटा भार भाजिष्णु। इस प्रकार ऋग्वेद में वर्णित केशी और वातरशना मुनि तथा भागवत पुराण में आए ऋषभ और वातरशना ऋषि एवं तीर्थंकर ऋषभनाथ और उनका निर्ग्रंथ संप्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं। केशी और ऋषभ के एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि ऋग्वेद की इस ऋचा से भी होती है, जहाँ दोनों नाम साथ साथ आए हैं। ककर्दवे विषभो युक्त आसीत अवावचीत सारथी रस्य केशी। इस प्रकार केशी और ऋषभ के एकत्व का स्वयं ऋग्वेद में ही पूर्ण समर्थन हो जाता है, जहां उल्लिखित शश्न देवो नग्न देवों से भी इसकी स्थिति प्रमाणित होती है। अतएव ऋग्वेद में उल्लिखित वातरशना मुनियों का निर्ग्रंथ साधुओं तथा उनकी नायक केशी ऋषभ देव के साथ एकीकरण हो जाने से जैन धर्म की प्राचीनता पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। यह सत्य है कि वेदों के रचना काल के संबंध में बहुत मतभेद है, किंतु आधुनिक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेद का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना है। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में वातरशना मुनियों तथा केशी ऋषभ देव का उल्लेख जैन धर्म का प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व में ले जाती है। 4. यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी जैन धर्म के तीर्थंकर अजीतनाथ का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में भी जैन धर्म की स्थापना नहीं हुई, बल्कि इसके पूर्व ही इसका प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि जैन धर्म में अजीतनाथ को द्वितीय तीर्थंकर माना जाता है। अतः इसके पूर्व उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का काल ऋग्वैदिक साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। अतएव यजुर्वेद भी ऋग्वैदिक काल से ही जैन धर्म की प्राचीनता की पुष्टि करता है। 5. महाभारत काल। महाभारत से जैन धर्म की प्राचीनता ईसा पूर्व 1000 सिद्ध होती है। यहाँ जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का उल्लेख हुआ है। नेमिनाथ जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जैनियों के 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका काल महाभारत के समय निर्धारित किया जाता है। नेमिनाथ महाभारत द्वारा शौरपुर के यादव वंशी ज्ञात होते हैं। उनके विषय में निम्न वर्णन मिलता है। शौरीपुर के यादव वंशी राजा अंधक वृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय थे। उन्हीं के पुत्र नेमिनाथ हुए। अंधक वृष्णि के छोटे पुत्र वासुदेव थे। इन्हीं के पुत्र वासुदेव कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार नेमिनाथ और कृष्ण आपस में चचेरे भाई थे। उस समय जरासंध का बड़ा आतंक था, इससे त्रस्त होकर शौरपुरी के यादव द्वारका में जा बसे। नेमिनाथ का विवाह वहीं गिरिनगर के राजा उग्रसेन की कन्या राजूलमती से तय हुआ था। बारात जाने पर उन्होंने बारातियों के भोजन में मांस पकाने के लिए वध हेतु लाए गए पशुओं को देखा और इससे द्रवित हो संन्यास का विचार लेकर तपस्या करने गिरनार पर्वत पर चले गए। वहां उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे श्रवण परंपरा के प्रचार में जुट गए। डॉक्टर हीरालाल जैन के अनुसार नेमिनाथ की यह विशेष देन इस परंपरा को ज्ञात होती है। अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल मानकर उसे सैद्धांतिक रूप देना महाभारत काल ईसा पूर्व 1000 के लगभग माना जाता है। डॉक्टर मेहता के अनुसार यही काल तीर्थंकर नेमिनाथ का मानना उचित प्रतीत होता है। 6. बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का चतुक्क निपात और उसकी अठ कथा महावग दिग्घ निकाय आदि के यद्यपि जैन धर्म की प्राचीनता का स्पष्ट काल नहीं ज्ञात होता है, किंतु उसमें वर्णित अंशों के समीक्षात्मक अध्ययन से यह अवश्य प्रतीत हो जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय चतुक्क निपात वग और उसकी अठ कथा में वर्णित निर्ग्रंथ श्रावकों के इसी प्रकार के और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनसे निर्ग्रंथ धर्म की सत्ता बुद्ध से पूर्व भली भांति सिद्ध होती है। पार्श्वनाथ तथा उनसे पूर्व के जैन तीर्थंकरों व जैन धर्म की स्थिति को पाश्चात्य विद्वान पहले स्वीकार नहीं करते थे, किंतु जब हर्मन याकोबी ने जैन व बौद्ध प्राचीन साहित्य के सूक्ष्म अध्ययन द्वारा महावीर से पूर्व निर्ग्रंथ संप्रदाय के अस्तित्व को सिद्ध किया, तब से पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता तथा जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकार किया जाने लगा। अब महावीर के निर्माण से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ को इस परंपरा में मान्यता देने लगे हैं। डॉक्टर मोहनलाल मेहता ने बौद्ध ग्रंथ में वर्णित निर्ग्रंथों के चतुर्याम को निर्ग्रंथ नाथ पुत्र महावीर का धर्म माना है या नहीं, इसकी विवेचना के लिए जब हम उनके मतों की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि जहां डॉक्टर मोहनलाल मेहता ने निगंठनाथ पुत्ते को महावीर माना है, वहीं डॉक्टर हीरालाल जैन ने निर्ग्रंथों के चतुर्याम और निर्ग्रंथनाथ पुत्र महावीर के बीच एकता स्वीकार नहीं किया है, बल्कि चतुर्याम का संबंध पार्श्वनाथ की परंपरा से जोड़ा है। उनका मत है कि जैन संप्रदाय में चतुर्याम का उल्लेख सदैव पार्श्वनाथ के साथ हुआ है, न कि महावीर के साथ। बौद्ध धर्म में जो भी कुछ व्यवस्था निर्ग्रंथों से लेकर उसमें स्वीकार की गई है, जैसे उपोषत, वर्षावास, वे सभी पार्श्वनाथ की परंपरा से ही ली गई है। अतः हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जैन धर्म को अपने धर्म के पूर्व सुसंगठित धर्म रूप में उल्लिखित करता है। अतएव बौद्ध धर्म जैन धर्म को महात्मा बुद्ध से पूर्व का धर्म माना जाता है। इन साहित्यिक साक्ष्यों के विश्लेषण से हम पाते हैं कि साहित्यिक प्रमाण जैन धर्म की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व सिद्ध करते हैं। ब पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के अस्पष्ट एवं मतभेद युक्त समीकरण से जैन धर्म की प्राचीनता सैंधव कालीन यानी 3000 ईसा पूर्व प्रमाणित होती है। इन प्रमाणों की विवेचना निम्न है। एक, सिंधु घाटी के उत्खनन में प्राप्त त्रिशूल, नग्न मूर्तियों तथा यौगिक आसन में प्राप्त मुद्राओं के द्वारा विद्वानों ने जैन धर्म की प्राचीनता सैंधव कालीन प्रमाणित करने का प्रयास किया है। मोहन जोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त त्रिशूल के प्रतीक के आधार पर जैन विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उस काल में जैन परंपरा प्रचलित थी। उनका कहना है कि जैन परंपरा में त्रिशूल को रत्न त्रय का प्रतीक माना गया है। इसी से कलिंग की जैन गुफाओं में हमें त्रिशूल का चिन्ह मिलता है। अतएव त्रिशूल जैन परंपरा का प्रतीक है। इसकी आलोचना करते हुए शैव विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि त्रिशूल का प्रतीक शिव के उपासक का बोधक है, क्योंकि शिव का त्रिशूल से निकट संबंध है। शिव का तीन अक्षरों से अधिक संबंध है, जैसे त्रिनेत्र, त्रिशूल आदि। अतएव कोई निश्चित मत इस दिशा में प्रतिपादित कर पाना असंभव है, क्योंकि जैन एवं शैव दोनों धर्मों में त्रिशूल को प्रतीक रूप में स्वीकार किया गया है। उपयुक्त किस धर्म से संबंध है, यही सही रूप में नहीं कहा जा सकता। दो, हड़प्पा उत्खनन से दो नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने उन्हें पुरुष और प्रकृति की मूर्ति माना है, पर दूसरी दृष्टि से इनको नग्न स्वरूप वाली जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी माना जाता है, जो दिगंबर संप्रदाय का आदि रूप रहा होगा। अतः यह मत प्रकट किया गया है कि उस काल में जैन धर्म प्रचलित था। क्योंकि नग्नता जैन धर्म की एक संप्रदाय दिगंबर की प्रमुख विशेषता है। जैन धर्म में कायोत्सर्ग पूर्णतः नग्नता पर विशेष बल दिया गया है। 3. यौगिक आसन में त्रिसिंहधारी आकृति के आधार पर जैन विद्वानों का यह विचार है कि यह मूर्ति जैन पद्मासन में बैठे सन्यासी से मिलती जुलती है। डॉक्टर हीरालाल जैन ने बताया है कि ध्यान का जितना संबंध श्रवण परंपरा से है उतना वैदिक परंपरा से नहीं है, और श्रवण परंपरा की जितनी अधिक प्राचीनता जैन धर्म में पाई जाती है और उतनी बौद्ध धर्म में नहीं। अतएव हम देखते हैं कि जैन धर्म के अनेक प्रतीक सिंधु घाटी के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, जिससे जैन धर्म की प्राचीनता सैंधव कालीन यानी 3000 ईसा पूर्व निश्चित होती है। 4. लोहानीपुर की मस्तकहीन मूर्ति पटना के लोहानीपुर मोहल्ले से 2.5 फीट ऊंची मिली है। इसका सिर तथा हाथ दोनों ही खंडित हैं। मूर्ति का तंग वक्षस्थल जैन तीर्थंकरों के तपस्यारत शरीर का नमूना है। मूर्ति पर चमकदार पॉलिश स्पष्टतः प्रमाणित करता है कि यह मूर्ति मौर्य कालीन है। ठीक इसी प्रकार की एक मानव मूर्ति जैसा उपवर्णित है हड़प्पा के अवशेषों में प्राप्त हुई है, जो पूर्णतः नग्न है। आकृति और भावाभिव्यंजन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि पटना के लोहानीपुर से प्राप्त मस्तकहीन नग्न मूर्ति से यह इस सिंधु घाटी की मूर्ति का काफी साम्य है। पूर्वोत्तर परंपरा के आधार पर हड़प्पा की यह मूर्ति वैदिक या बौद्ध प्रणाली से भिन्न एवं जैन प्रणाली से पूर्णतया सादृश्य रखती है। इस समीकरण को स्वीकार करने पर सिंधु घाटी के काल की सभ्यता में जैन परंपरा का अस्तित्व न किसी रूप में प्रमाणित होता है। डॉक्टर मेहता के अनुसार मोहनजोदड़ो की नग्न मूर्तियों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग केवल योग की साधना ही नहीं करते थे, अपितु योगियों की प्रतिमाओं की पूजा भी करते थे। अतएव लोहानीपुर की मस्तकहीन नग्न मूर्ति से भी जैन धर्म की प्राचीनता सैंधव कालीन अर्थात 3000 ईसा पूर्व में अविच्छिन्न प्रमाणित होती है। इन आधारों पर यह देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जैन धर्म को प्राचीनता जहां 1500 ईसा पूर्व प्रमाणित होती है, वहीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जैन धर्म की प्राचीनता 3000 ईसा पूर्व प्रमाणित होती है। यह मान्यता अधिक सही लगती है। तीर्थंकर परंपरा। महावीर ने अपने समय से जैन धर्म को संगठित स्वरूप प्रदान किया। यह इसके 24वें तीर्थंकर थे। इनके पूर्व 23 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के विषय में भी कुछ व्यवस्थित ज्ञान मिलता है। इसके प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, जो अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों की परंपरा में उत्पन्न हुए थे, किंतु विस्तृत जानकारी इनके विषय में भी अप्राप्य है। इनके बाद पार्श्वनाथ के पूर्व तक तीर्थंकरों के विषय में प्रामाणिक ज्ञान का अभाव है। 1. पार्श्वनाथ का जीवन एवं उनका सिद्धांत। जीवन। भारतीय दार्शनिक विचारधारा में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महत्वपूर्ण योगदान है। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन पार्श्वनाथ के प्रारंभिक क्रम के तीर्थंकरों में ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। वैसे तो जैन अवधारणा में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन तीर्थंकरों जैन मत के प्रवर्तकों की उपासना की जाती है। तीर्थंकर को जैन धर्म में मुक्त सिद्ध सर्वशक्तिमान तथा आनंदमय माना जाता है। इसी प्रकार की अवधारणा पार्श्वनाथ के साथ भी जुटी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से 250 वर्ष पूर्व बनारस के नागवंशीय राजा अश्वसेन और उनकी रानी वर्मला वामा देवी से हुआ था। युवा होने पर उनका विवाह कुशस्थल द्वारका के राजा नरवर्मन की लड़की प्रभावती से हुआ। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर तपस्वी होकर सम्मेद शिखर पर्वत पर तपस्या किया। यह पर्वत आज तक उन्हीं के नाम की यादगार में पारसनाथ पर्वत बिहार में नाम से सुविख्यात है। 83 दिन चिंतन के बाद उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर 70 वर्ष तक श्रवण धर्म का उपदेश और प्रचार किया। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के तपस्यारत जीवन का उल्लेख समंत भद्रकित स्वयंभू स्त्रोत नामक जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि जिस समय पार्श्वनाथ अपनी तपस्या में निश्चिंत भाव से ध्यानावस्थित थे, उस समय उनके पूर्व जन्म का शत्रु कामसुन नाना प्रकार के उपद्रवों द्वारा उनको तपस्या से भ्रष्ट करने का प्रयास किया। उसने प्रचंड वायु चलाई, घनघोर वृष्टि की, मेघों से वज्रपात कराया, फिर भी पार्श्वनाथ ध्यान से विचलित नहीं हुए। उनके इस कठिन तपस्या से प्रभावित होकर धरणेन्द्र नाग ने आकर अपना विशाल फलमंडल उनके ऊपर फैलाकर उपद्रव से उनकी रक्षा की। तमाल नीलहि सतनुस्तिडत गुड़हि तदिदम्बुदो यथा। घोर तपस्या के पश्चात पार्श्वनाथ को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने श्रवण धर्म का उपदेश और प्रचार 100 वर्षों तक किया। जैन पुराणानुसार उनका निर्वाण भगवान महावीर के निर्वाण से 250 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा पूर्व 527 प्लस 250 इक्वल टू 777 वर्ष में हुआ था। इनके बाद इनके शिष्य केशी ने इस संप्रदाय को विकसित किया। जैन धर्म में पार्श्वनाथ का योगदान विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने संप्रदाय को संगठित किया। उनका संप्रदाय निर्ग्रंथ कहलाया। उन्होंने स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही अपना शिष्य बनाया। उन्होंने चार गढ़ों की स्थापना की। उनके चार गढ़ों में प्रत्येक गढ़ का एक अध्यक्ष होता था, जिसको गढ़धर कहते थे। इन्हीं के अनुयायियों द्वारा आगे चलकर श्वेतांबर संप्रदाय का संगठन हुआ। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसी से श्वेतांबर कहलाए। इसके मानने वाले प्राचीन मतानुयायी कहलाए, जबकि महावीर के सिद्धांतों को मानने वाले नए मत के अनुयायी कहलाए। पर महावीर के समय तक दोनों में पूर्ण एकता थी। जब महावीर ने पीछे इसके सिद्धांत में पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य और जोड़ा, तो शंका उत्पन्न हुई और दोनों में विभेद हो गया। पर महावीर के शिष्य गौतम ने यह कहकर इस संशय का समाधान किया कि यह चौथे व्रत में ही यह पहले से जुड़ा था और स्पष्ट न होने के कारण स्पष्ट करने के लिए इसको अलग से जोड़ा गया। सिद्धांत जैन ग्रंथों में इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सिद्धांत के विषय में उल्लेख है कि उन्होंने अपने निर्ग्रंथ संप्रदाय के लिए चातुर्याम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। डॉक्टर हीरालाल जैन का मत है कि पार्श्वनाथ का श्रवण परंपरा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप पार्श्वनाथ ने अपने चातुर्याम के ऋषभनाथ की सर्वस्व त्याग रूप अकिंचन मुनि वृत्ति, नमी की निरीहता व नेमीनाथ की अहिंसा को समन्वित किया। चातुर्याम का उल्लेख निर्ग्रंथों के संबंध में पाली ग्रंथों में भी मिलता है और जैन आगमों में भी, किंतु उनके चार याम क्यों थे, इसके संबंध में मतभेद पाया जाता है। यही चातुर्याम का सिद्धांत जैन धर्म में चार व्रतों के नाम से जाना जाता है। ये चार व्रत निम्न है: एक, अहिंसा अर्थात हिंसा का त्याग; दो अमृषावाद अर्थात झूठ न बोलना; तीन, अस्तेय अर्थात चोरी न करना; चार, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति का त्याग करना; एक, अहिंसा। जीवों की हिंसा न करना ही जैन धर्म में अहिंसा कहा जाता है। जीव केवल गतिशील द्रव्यों में ही नहीं, बल्कि वह वनस्पति, क्षिति, जल आदि में भी है। इन सभी जीवों की हिंसा करना जैन दार्शनिक विचारधारा में निषिद्ध कर्म माना जाता है। इसलिए पीछे चलकर जैन सन्यासियों द्वारा नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने की परंपरा चल पड़ी। अहिंसा के पालन के लिए जीवों की हिंसा न करने तक ही यह सीमित नहीं था, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा का पालन करना चाहिए, ऐसी मान्यता थी। दो, सत्य। जैन ग्रंथों में मिथ्या वचन न बोलना ही सत्य नहीं माना गया है। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सबका हित करने वाला और प्रिय हो। इस व्रत का पालन करने के लिए मनुष्य को लोक भय, क्रोध, मान आदि का परित्याग कर देना चाहिए। साथ ही किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। तीन अस्ति है। जैन ग्रंथों में बिना वस्तु के स्वामी द्वारा किसी को कुछ दिए उसके धन को ग्रहण करना ही अस्तेय है। धन तथा संपत्ति मनुष्य का बाह्य जीवन है, अतएव किसी की संपत्ति को अपहृत करने का अर्थ है किसी के जीवन का अपहरण करना। धन जीवन के लिए आवश्यक है, अतः किसी के धन का अपहरण करने का निषेध किया गया है। चार अपरिग्रह, विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग ही अपरिग्रह है। वे सभी विषय जैन धर्म में त्यागने योग्य बताए गए हैं जिनसे कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो सकती है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद आदि, सभी का त्याग इसके अंतर्गत आता है। जैन धर्म एवं जैन दर्शन के परंपरा तक इनके ये चार सिद्धांत वैसे के वैसे ही बने रहे। महावीर स्वामी ने आगे चलकर इसमें एक और सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ का विश्वास वेदों में न था, वे वेदों के दर्शन से प्रभावित न थे। वह यज्ञ, देवता, वर्ण आदि के विरोधी थे। स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, सभी को उन्होंने मोक्ष का अधिकारी समझा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। स्वयं महावीर को भी पार्श्वनाथ के कई समर्थकों से वाद विवाद करना पड़ा था। इन्हें संतुष्ट करके ही वे उनको अपना समर्थक बना सके। पार्श्वनाथ के सिद्धांत यथावत जैन धर्म में तो पूर्ण रूपेण स्वीकार किए गए, जिसे महावीर ने आगे चलकर और विकसित किया। पार्श्वनाथ की दार्शनिक विचारधारा वैदिक दार्शनिक विचारधारा एवं मंत्रवाद से दूर थी। उन्होंने वैदिक यज्ञ, कर्मकांड, देववाद, वर्ण व्यवस्था के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाकर अपने को युग युग से उपेक्षित एवं बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन प्राप्त करने में योग्य साबित किया। यज्ञों में चढ़ाई जाने वाली बलि की प्रथा एवं अनेक रूपों से की जाने वाली हिंसा से जनमानस उब चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में पार्श्वनाथ के चातुर्याम विचारधारा से भारतीय दर्शन एवं भारतीय जनजीवन को नव चेतना मिली। जैन आगमानुसार पार्श्वनाथ के चार्याम इस प्रकार थे। एक, सर्व प्राणातिक्रम से विरमण। दो, सर्व मिशावाद से विरमण। तीन, सर्व अदत्तादान से विरमण। चार, सर्व बहिस्थादान से विरमण। डॉक्टर हीरालाल जैन का मत है कि पार्श्वनाथ का चातुर्याम का रूप महावीर से सामयिक धर्म से पूर्व ही प्रचलित था। इस मत की पुष्टि दिगंबर श्वेतांबर परंपरा के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के साहित्यिक उल्लेखों से भी होती है। जैन आगमों में पार्श्वनाथ के चातुर्याम का विस्तृत वर्णन निम्नवत है। एक, सर्व प्राणातिक्रम से विरमण। इसके अंतर्गत निर्ग्रंथ मुनि को अहिंसा का व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए निम्न पांच उपनियमों का परिपालन करने का आदेश है। एक, इरिया समिति। इसके अंतर्गत ऐसे मार्गों से चलने का आदेश दिया गया है जिसमें कीट पतंगों तक का पैर से कुचल कर मरने का भय न हो। दो, भाषा समिति। इसके अंतर्गत सदैव मधुर वाणी बोलने का निर्देश दिया गया है जिससे वाचिक हिंसा न हो। तीन, ऐषणा समिति। भोजन द्वारा किसी भी प्रकार के कीटाणुओं की हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया गया है। चार, आदान क्षेपक्षा समिति। इसके अंतर्गत भिक्षुओं को आदेश दिया गया है कि वे अपनी संपूर्ण सामग्री का उपयोग करते समय देख लें कि कहीं उनके द्वारा किसी कीट पतंग की हिंसा तो नहीं हो रही है। पांच, युत्सर्ग समिति। इसके अंतर्गत ऐसे स्थानों पर मलमूत्र त्यागने का निर्देश दिया गया है जहां इससे किसी भी कीट कीटाणु की हिंसा न हो सके। दो, सर्व मृषावाद से विरमण। इसके अंतर्गत श्रमण निर्ग्रंथ मुनियों को सदैव सत्य बोलने का आदेश दिया गया है। इसके लिए निम्न पांच उपनियमों के पालन करने का आदेश है। एक, अनुशिम भाषी। बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। दो, कोहम परिजानाति। निर्ग्रंथ साधियों को क्रोध आने पर मौन रहने का आदेश दिया गया है। तीन, लोभम परिजानाति। इसमें लोभ की भावना जागृत होने पर मौन रहने का निर्देश दिया गया है। चार, भयम परिजानाति। निर्ग्रंथ साधुओं को भय उत्पन्न होने पर भी असत्य नहीं बोलने का आदेश दिया गया है। 5 हाशम परिजानाते। निर्ग्रंथ श्रमण भिक्षुओं को आदेश दिया गया है कि उन्हें कभी भी हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। 3 सर्व अदत्ता दान से विरमण। इसके अंतर्गत अस्तेय व्रत का गंभीरता पूर्वक परिपालन करने का आदेश दिया गया है। अस्तेय व्रत अर्थात चोरी न करना या बिना अनुमति किसी भी वस्तु न लेने के लिए भिक्षुओं का निम्न 5 उपनियमों के परिपालन का उपदेश दिया गया है। 1 बिना आज्ञा किसी के घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। 2 गुरु की आज्ञा बिना भिक्षार्जित भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 3 बिना अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना चाहिए। 4 किसी के घर में रहते हुए बिना गृह स्वामी की आज्ञा के उसके किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। 5 यदि कोई भिक्षु किसी के घर में निवास कर रहा है तो उस समय भी गृह स्वामी की आज्ञा के बिना उसके घर में नहीं रहना चाहिए। 4 अपरिग्रह अर्थात सर्व बहिष्ठादान से विरमण। इसके अंतर्गत अपरिग्रह व्रत का पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए निम्न 5 उपनियमों का अनुसरण करना चाहिए। 1 श्रोत्रेंद्रिय के विषय शब्द के प्रति अनाशक्त भाव रखना। 2 चक्षुरेंद्रिय के विषय रूप के प्रति अनाशक्त भाव रखना। 3 घ्राणेंद्रिय के विषय गंध के प्रति अनाशक्त भाव रखना। 4 रसनेन्द्रिय के विषय रस के प्रति अनाशक्त भाव रखना। 5 स्पर्शेंद्रिय के विषय स्पर्श के प्रति अनाशक्त भाव रखना। पार्श्वनाथ का यह चातुर्मार्य रूप सामायिक धर्म महावीर से पूर्व ही सुप्रचलित था। यह दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के अतिरिक्त बौद्ध पाली साहित्य के उल्लेखों से भली भांति सिद्ध हो जाता है। मूलाचार के आधार पर डॉक्टर जैन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि महावीर के पूर्व के तीर्थंकरों ने सामयिक संयम का उपदेश दिया था तथा केवल अपराध होने पर ही अतिक्रमण करना आवश्यक बतलाया था। एक समय था जब पार्श्वनाथ तथा उनसे पूर्व के जैन तीर्थंकरों व जैन धर्म की सत्ता को पाश्चात्य विद्वान स्वीकार नहीं करते थे, किंतु जब जर्मन विद्वान हरमन याकोवी ने जैन व बौद्ध प्राचीन साहित्य के सूक्ष्म अध्ययन द्वारा महावीर से पूर्व निर्ग्रंथ संप्रदाय के अस्तित्व को सिद्ध किया, तब से विद्वत वर्ग पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने लगे और महावीर के निर्माण से 250 वर्ष पूर्व उनके निर्माण प्राप्ति की जैन परंपरा को भी मान्यता देने लगे हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी जैन ग्रंथों के चातुर्याम का उल्लेख मिलता है और उसे निर्ग्रंथ नाथपुत्र महावीर का धर्म कहा गया है, किंतु इसका संबंध पार्श्वनाथ की परंपरा से स्वीकार किया जा सकता है। इसका कारण है कि जैन संप्रदाय में पार्श्वनाथ के साथ ही चातुर्मार्य का उल्लेख पाया गया है, महावीर के साथ कदापि नहीं। बौद्ध धर्म की निर्ग्रंथ व्यवस्थाएं जैसे उपोषत वर्षावास आदि को भी पार्श्वनाथ परंपरा का ही माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जैन धर्म में महत्वपूर्ण योगदान है तथा वे ऐतिहासिक पुरुष थे।